नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग बांध पेयजल परियोजना और जमरानी बांध परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने राज्य की साहित्यिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से 3 नई शोध परियोजना का शुभारंभ किया। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मों का प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही दिल्ली देहरादून रूट पर 100 नई बसों का संचालन शुरू करेगा। और वायुसेना के बहुउद्देश्य विमान AN-32 ने चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। संध्या समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सौंग बांध पेयजल परियोजना पर काम शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। इस अवसर पर श्री धामी ने विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवारों को उनकी सहमति के आधार पर जल्द भूमि उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर यदि सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य कोई निर्माण करने की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाए। गौरतलब है कि सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून शहर की करीब 11 लाख आबादी को प्रतिदिन 150 MLD पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा। बांध के निचले हिस्से में स्थित 10 गांवों की करीब 15,000 आबादी भी बाढ़ से सुरक्षित रहेगी। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने राज्य की साहित्यिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से 3 नई शोध परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इन परियोजनाओं को भाषा विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल के अनुमोदन के बाद प्रारंभ किया गया है। यह प्रयास राज्य के साहित्य और संस्कृत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। श्री उनियाल ने बताया कि कुमाऊनी गढ़वाली समेत अन्य बोली भाषाओं को संरक्षित करने की ठोस योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हिंदी साहित्य को अद्वितीय योगदान दिया है। उनकी रचित ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक कृतियों का समग्र संग्रह तैयार करने की योजना बनाई गई है। यह पहल उनके साहित्यिक योगदान को सहेजने और इसे व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गोवा में आयोजित 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मों के प्रदर्शन और कार्यक्रम जारी हैं। आज विभिन्न विधाओं की 40 से अधिक फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्में शामिल हैं। भारतीय पैनोरमा खंड आधिकारिक तौर पर अपने उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गया है, जिसमें चयनित 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का प्रदर्शन होगा। प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां संगोष्ठियों और परिचर्चाओं के माध्यम से दर्शकों से जुड़ रही हैं। इसके साथ ही फिल्म बाजार का 18वां संस्करण भी गतिविधियों से भरपूर है, जो महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों के बीच संपर्क और सहयोग के सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश में एक व्यापक खेल नीति लागू करने पर काम कर रहा है। मंत्रालय भारत को खेलों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. मांडविया आज पटना में आयोजित समारोह में बिहार के खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में एक व्यापक खेल विधेयक लाएगी, इससे खेलों में उत्कृष्टता के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उन्होंने सभी खेल महासंघों से देश में खेलों की बेहतरी के लिए एकजुट होने और मुकदमेबाजी में न फंसने की अपील की। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी जिले के पाबो में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। डॉ. रावत ने पाबो स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण और मुख्य सड़क से कॉलेज तक डामरीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने खतगेड़ गाँव जाने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने पाबो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने व मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने एक कार्यक्रम में 270 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरित किए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही दिल्ली देहरादून रूट पर 100 नई बसों का संचालन शुरू करेगा। इसके लिए निगम ने शासन को 100 नई BS6 मॉडल बसों की खरीद का प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद इन बसों को दिल्ली रूट पर शामिल किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के चलते दिल्ली में BS3 और BS4 बसों का संचालन बंद है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम यूपी के मोहननगर और कौशाम्बी तक बसें संचालित करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत जारी है। वर्तमान में दिल्ली रूट पर निगम की करीब 300 बसें चल रही हैं, जिनमें 181 CNG, 12 वॉल्वो और 103 नई बसें BS6 शामिल हैं। वायुसेना के बहुउद्देशीय विमान AN-32 ने आज उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। आगरा स्थित वायुसेना बेस से चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर 11 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभ्यास के लिए वायुसेना की संचार टीम 5 दिन पहले ही चिन्याली सौंड पहुंच गई थी। गौरतलब है कि बुधवार को भी आगरा स्थित वायुसेना के एयरबेस से विमान AN-32 ने चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह अभ्यास पायलट प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी ने बताया कि भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बनी चिन्याली सौंड हवाई पट्टी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना कई वर्षों से चिन्याली सौंड हवाई पट्टी पर अभ्यास कर रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य की महिला सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनकी उपलब्धियों, समस्याओं और अपेक्षाओं को संज्ञान में लिया जाएगा। श्रीमती आर्य ने आज देहरादून में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और सरकारी सस्ता गल्ला राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य में सस्ता गल्ला राशन वितरित करने वाली 50% दुकानों का स्वामित्व महिलाओं को है। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राशन डीलरों के समक्ष आ रही चुनौतियों के समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं का समूह बीमा कराने की दिशा में भी नीति को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि उनके हितों की रक्षा और अधिक मजबूती से की जा सके। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय की ओर से 21वीं अखिल भारतीय पशुगणना का कार्य शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस पशुगणना में 16 प्रजातियों के 219 देशी नस्ल के पशुओं को डेटा एकत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के साथ ही चंपावत जिले में भी यह कार्य किया जा रहा है। जिले के सहायक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नंदन प्रसाद आगरी ने बताया कि चंपावत में 744 ग्राम सभाओं के 62,303 शहरी व ग्रामीण परिवारों के गौवंशीय व श्वान पशुओं की गणना की जा रही है।
भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक 5 वर्ष में पशुगणना कार्य किया जाता है, जिसमें कि 21वीं पशुगणना पूरे भारतवर्ष के साथ साथ हमारे राज्य में भी आरंभ हो चुकी है और 25 अक्टूबर से इसका कार्य हमारे 25 प्रगणक हैं जो विलेज लेवल पर जाकर घर घर जाकर इसका कार्य आरंभ कर दिया गया है। जनपद चंपावत में 744 ग्राम सभाएं, वार्ड्स और रेंज हैं जिसमें कि इसका कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 765 परिवारों की पशुगणना हो चुकी है।
वन विभाग ने बागेश्वर जिले के 7 गांव के स्वयंसेवी अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षित किया। इस योजना में जिले के 200 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें अब तक 55 गांवों के अग्निशमन कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। SDRF प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में सभी स्वयंसेवी अग्निशमन कर्मियों को पारंपरिक और आधुनिक तरीके से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जब हमारा फायर सीजन आता है तो उस समय पे बड़ी स्तर पे यहाँ पे आग लगती है, तो उसमें ग्रामीण अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो उसके संबंध में हमने इनको विस्तृत जो है प्रैक्टिकल भी करा के हमने इनको जानकारी दी कि कैसे इन्हें अपना बचाव करना है। और साथ ही साथ न सिर्फ आपके वनाग्नि के समय बल्कि अन्य प्रकार की जितनी भी आपदाएं आती हैं हमारे मानसून सीजन पे या फिर हमारे कोई एक्सीडेंट वाले केस होते हैं, तो ऐसे समय पे कैसे हमने तुरंत जो है अपना प्राथमिक उपचार करके अपना कैसे उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करके हॉस्पिटलाइज करना है और अपने आप की सबसे पहले अपने आप की सेफ्टी है, ये सब के बारे में हमने विस्तृत प्राथमिक उपचार का पूरा प्रशिक्षण दिया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग बांध पेयजल परियोजना और जमरानी बांध परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने राज्य की साहित्यिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से 3 नई शोध परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मों का प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही दिल्ली देहरादून रूट पर 100 नई बसों का संचालन शुरू करेगा और वायुसेना के बहुउद्देशीय विमान AN-32 ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।